अज्ञानमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदनाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदादे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय अङ्गश्यामलिच्छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दि परं जटन् जागुदरोचि संविदतनुपट्टं वरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दन्वेषितो जलभुजं ध्यायेन् ताम् से माधुर्य कादम्बिनी हम लोगों ने उत्साहमयी घंतरना और पीयूष विकल्पा इनके संबंध में हम लोगों ने बतलाया है। अब विषय संग्रह के संबंध में बतला रहे हैं। साधक भजन जब करता है तो कभी कभी विषयों का भोग करना अवश्य हावी हो जाता है। कभी कभी उसको त्यागने की चेष्टा करता है, कभी कभी भोग भी करना पड़ता है। तो विषयों से कभी हार जाता है, कभी जीत जाता है। इसके बाद में ग्रंथकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनिश्चितता भजन दशा की विषय संग्रह नामक अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। भजन में प्रवृत्त होइले साधक चित्त अनादि संस्कार वशत प्रतीत जाए विषय दिगे जाए। सृष्टि प्रारंभ थी के हमारा विषय दिगे चित्त जाच्छे। एखन गुरु वैष्णव कृपाते एक तो सुजोग हमारा पेला এখন একটু চেষ্টা করছে যে বিষয় ছেড়ে দিয়ে বিষয় ছেড়ে দিয়ে এখন ভগবানের ভজন করি। কিন্তু চেষ্টা করলে কি হবে, স্বাভাবিক রূপে ওখান নৈসর্গবশত ওদিকে হয়ে গেছে যে বিষয়ের দিকে চিত্ত যাবে। গোপীরা বলছে আমরা কৃষ্ণকে ভুলি গিয়ে অন্যদিকে চিত্ত নিয়ে যেতে চাই, কিন্তু পুনঃ পুনে এদিকে মুক্ত মহাপুরুষ গণের এইটি বিষয়ের দিকে নিয়ে আসলেও ওই দিকে চিত্ত। আর আমাদের সাধকের চিত্ত চেষ্টা করলেও আবার ওই দিকে বিষয়ের দিকে চলে যায়। বিষয় অবশ্য চিত্তানান विष्णु आवेश सुदूत वारुणिदिग्गतम वस्तु भजन नैन्द्री किमापनीयात। विषय ते चित्त आविष्ट जहां दे कृष्ण ते मनोनिवेश करा भारी कठिन एवं दूर की बात है, कठिन जिस प्रकार कोई व्यक्ति पूरब की तरफ में जा रहा है तो पश्चिम की चीज कैसे मिलेगी, या पूरब की चीज पूरब में है और पश्चिम की जा रहा है, वो नहीं मिलेगा। विष्णु पुराण का ये वचन है। इस वचन से भगवत आसक्ति के विपरीत ये विषय भोग की वस्तुएं बलपूर्वक निजे दिगे आकर्षण करें। भक्त सोचे जो हो भारी कष्ट कर, हमार भजन आसक्ति के विषय दिगे निये जी हमार स्थिर करे दिशे। এই জন্য বিষয়ভোগগুলিকে ত্যাগ করে একান্তি রূপে হরি নাম আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। এই প্রকার নিশ্চিত করে সে ভক্ত বিষয় ত্যাগের চেষ্টা করলেও দুঃখজনক জেনেও ও বিষয় ভোগদার হয়ে যায়। ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি এই জাতীয় ভক্তগণের কথা বলছেন, জাত শ্রদ্ধ মত কথাসু নির্বিণ্ণ বিষয় সর্বকর্মসু বেদুখাত্মকান কামান প্রত্যাগে অপি অনিশ্বর তত ভজেত মান প্রীত শ্রদ্ধালু দৃঢ় নিশ্চয় জুষ্মাণাংশ তান কামান দুঃখো তকাশুকর। যে সাধক কর্ম থেকে বিরক্ত হয়েছে তাতে দুঃখ বুদ্ধি কর্ম সব সময় দুঃখদায়ী, দুঃখদায়ী এটা বুঝে। আর আমার লীলা কথাতে শ্রদ্ধালু আর এউটি জানে এ সব ভোগ বাসনায় দুঃখ সবগুলি দুঃখ স্বরূপ, কিন্তু জানলেও প্রত্যাগ করতে পারে তখন কৃষ্ণ বলছেন যে সাধক তাকে ভোগ করে কিন্তু সচ্চে হৃদয় সে কিন্তু নিষ্কপট হৃদয় দ্বারা তাকে দুঃখজনক সমঝে আর নিজের নিন্দা করতে করতে কর্মের নিন্দা করতে 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 তাকে কোনোরকম ভোগ করে আর নিজের দুর্ভাগ্য মনে করে হায় হায় আমাকে ভোগতে হচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে দুবিধার স্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দৃঢ় শ্রদ্ধা নিশ্চয় আর প্রেম সে মেরা ভজন করতা যদিও তাকে ভোগ করতে হচ্ছে সাংসারিক কামনা বাসনা তথাপি দুঃখপূর্বক আর দৃঢ় রূপেতে আমার ভজন করতে যে কোনো পরিস্থিতি আসে একবারে দৃঢ় এই দুটি শ্লোকে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর ভাগবতীতে তাহার টিকা যে করেছেন তার তাৎপর্য এই দু শ্লোকমে ভক্তিকে অধিকারী কা প্রারম্ভিক অবস্থা কা বর্ণন হমলোক প্রারম্ভিক মে যো সাধক স্ত্রী পুত্র আদি সে উৎপন্ন বিষয় সুখো কো দুঃখ সমঝতা তো হয় মনে করে কিন্তু প্রত্যাগ করতে সমর্থ হয়। তারা বিষয় ভোগকে দুঃখ বুদ্ধি মনে করে উদ্বিগ্ন চিত্তেতে ভক্তি বিষয়ে এই প্রকার দৃঢ় নিশ্চয় করে কি নিশ্চয় করে গৃহিত্যাগিনে আসক্তি দূর হোক ন হোক, গৃহেতে আমার শক্তি দূর হোক নাই হোক, ভজন মে কোটি কোটি বিঘ্ন আয়ে অপরাধও কারণ নরক মে ভি জানা পড়ে কাম কো অঙ্গীকার করনা পড়ে তো কই বাত নাই কিন্তু কিছু ভি স্থিতি মে ভক্তি নেই ছোড় সকতা প্রাণ যায় ভজন না যায় ভজন চাহে যো কুছ হো যায় জিস অবস্থা মে যা ভি যাও নরক মে স্বর্গ भजन नहीं छोड़ूंगा। यदि ब्रह्मा करके कहेंगे तो भी नहीं, ज्ञान कर्म इत्यादि का अवलंबन कर ব্রহ্মা, এই ব্রহ্মা কবি যদি আর কে যে কর্ম জ্ঞান কা অবলম্বন করো, কদাপি নাই করো। ভজন আরম্ভ হোনে পর উসকি ভক্তি মে জেসি দৃঢ়তা হতি হয়, বিষয় ভোগ মে উসকি দৃঢ় আসক্তি নাই হতি, তবে মন জাতা হয়। ক্যোকি বিষয় ভোগ কো পরিমাণ মে দুঃখ জনক জান কর, নিন্দা করতে করতে ভোগ করতে হয়, ওহো ये विषय भोग मेरे लिए अनर्थकारी हैं, भगवत प्राप्ति के प्रतिकूल हैं, क्योंकि अनेकों बार नाम ग्रहण पूर्वक समत सपत पूर्वक इनको त्याग किया मैंने, तभी भोग करना ही पड़ता है। अतः विषयों की निंदा भी करते हैं, समय पाने पर उसका भोग भी करते हैं। जब निंदा करते हैं तब विषयों की पराजय, और जब विषयों का भोग करते हैं तो उनसे अपने खुद पराजित हो जाते हैं। इसी अवस्था का नाम विषय संग्रह है। ट्रांसलेशन,
I will never leave my bhajan. Even if Jagatguru Brahma comes and instructs me to perform karma, jnana, or yoga, Brahmaji, then I will never give up my determination to perform bhajan. Therefore, that is the qualification. That firm determination to do bhajan despite one's progress or lack of progress. Therefore, knowing that material enjoyment is unfavorable for the achievement of Krishna, the sadhak, while condemning himself, continues doing bhajan. This state is called Visaya Sangara, sometimes achieving victory over the senses and sometimes being controlled.
Taranga Rangini. अभी नहीं हुआ नियम क्षमा इसके पश्चात नियम क्षमा नियम अक्षमा नियम पालन में अक्षम नियम तो कर लेता है पालन करने में अक्षम समर्थ नहीं होता इस दशा में साधक इस प्रकार संकल्प करता है आज से मैं 100,000 हरिनाम करूंगा या एक संख्या में 50,000 नाम करूंगा और भगवान के परिकरों या लीला स्थलियों और वैष्णवों के लिए 1,008 प्रणाम करूंगा दंडवत इस प्रकार भगवान की और भक्तों की सेवा करूंगा जिन चीजों का भगवत संबंध नहीं है ऐसे वचनों का उच्चारण नहीं करूंगा जो लोग ग्राम्य वार्ता करते हैं ग्रामीण बातें करते हैं इधर उधर की व्यक्त की चर्चा सब प्रकार से मैं त्याग करूंगा इस प्रकार प्रतिदिन पुनः पुनः नियम का संकल्प करके भी यथा समय में प्रतिपालन करने में असमर्थ हो जाता करने पर एक दो दिन किया हरिनाम 100,000 सिर में दर्द हो गया कुछ गड़बड़ी हो गई कोई काम हो गया उसी प्रकार से और सब नियमों का इसलिए साधक की इस अवस्था का नाम नियम क्षमा नियम अक्षमा कहा गया विषय संग्रह और नियम क्षमा प्राय एक ही जैसे विषय संग्रह विषयों से युद्ध में हार जीत का और नियम क्षमा में थोड़ा सा भेद दिया है विषय संग्रह की दशा में विषयों को त्यागने में समर्थ नहीं होता है और नियम क्षमा में भक्ति के कष्ट साधन करने की क्षमता नहीं है वो विषयों को त्याग सकता है इधर वाला किंतु भक्ति के उत्कर्ष साधन करने की इनमें क्षमता नहीं होती है तरंगरंगिनी इसके बाद में तरंगरंगिनी का विचार कर रहे हैं जिस प्रकार जल की स्वाभाविक गति नीचे होती है पानी नीचे की तरफ में जाएगा उसी प्रकार जनसाधारण की प्रीति स्वाभाविक गति भक्तों की तरफ में जाती है यदि कोई व्यक्ति निष्कपट से भजन करना आरंभ कर दिया कुछ शास्त्रों का ज्ञान हो गया और जब हरि कथा बोलने लगता है तो सब लोगों की रुचि होती है कि इस भक्त की हम सेवा करें इसको कैसे संतुष्ट करें तब उसको लोग रुपया पैसा प्रतिष्ठा कोई अच्छी अच्छी वस्तु उसे देने लगते हैं जो लोग समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप हरि के एकांत की भक्ति करते हैं उनके भक्तिमूलक अर्चन के द्वारा निखिल जगत प्रतिप्त हो जाता है। पुराण पद्म पुराण में कहा गया, जेनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रंजन्ति जन्तवस्पर तत्र जंगमास्थिर स्थावरा। जिस व्यक्ति ने भगवान का अर्चन किया, भगवान को संतुष्ट किया, भजन कर रहे हैं, उसके द्वारा समस्त जगत तृप्त हो जाता है। स्थावर जंगम सभी प्राणी उस भक्त से अनुराग प्रेम करने लगते हैं। अनुराग का फल यह होता है, अभी भी देख लो तुम लोगों में से यदि कोई हरि कथा प्रचार करते हैं, मधुर कथा बोल सकते हैं, कुछ भजन करते हैं, तो साधारण लोग उसकी हरि कथा सुन करके प्रभावित हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसको सब प्रकार से सेवा करते हैं। अनुराग का फल यह होता है वे भक्त का सम्मान, उसकी पूजा करने लगते हैं। इतना ही नहीं, वैसायिक ब्रह्म ऐश्वर्य तीनों प्रकार के सुख संपद भी अपने आप उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है, जरूर आएगी। जैसे किसी लरूप गोस्वामी ने भक्ति रसा में सिंधु में कहा है, सिद्ध परमाश्चर्य भुक्ति मुक्तिश्च शाश्वती नित्यंच परमानंदो भवेत गोविंद भक्ति रतः। अणिमा इत्यादि परम आश्चर्यमय सिद्धियां भोक्ति मुक्ति ब्रह्मसूच तथा नित्य परमानंद भी गोविंद में भक्ति रखने वालों को अनायास ही ये सब प्राप्त हो जाए। सिद्धियां उनके पीछे पीछे चलती हैं नहीं चाहने पर भी, किंतु शुद्ध भक्त कृष्ण की प्रेम सेवा छोड़कर लाभ पूजा प्रतिष्ठा मुक्ति भुक्ति सिद्धि कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि वे भक्ति विरोधी हैं शुद्ध भक्त। किंतु कुछ लोग इसमें पड़ जाते हैं, इस चक्कर में लाभ पूजा प्रतिष्ठा में सेवा में और भक्ति से भक करके दूर हो जाते हैं। साधकों को सचेत रहना चाहिए, खूब सच जो जरूरत हो बस वही ग्रहण करें। जैसे कि हरिदास ठाकुर की शिष्या वैश्या ज्योति जब हो गई वैष्णवी, कितने लोग सब अपने आप देने आए और उसमें जितनी जरूरत होती बस उतना ही ग्रहण करते, सब लौटा। लाख पूजा प्रतिष्ठा को भक्ति का उपशाखा कहा गया है। ये साधकों के श्रवण कीर्तन जलधारा को से सिंचित होकर के स्वयं परितुष्ट हो जाते हैं, भक्ति को दबा देते हैं। इसलिए साधकों को इन उपशाखाओं को पहले छेदन करना चाहिए, ऐसे प्रतिष्ठा लोग पूजा इत्यादि से बच करके साधु होकर यदि किंतु यदि लता संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति वंछा जसो असंख्यता निषिद्धाचार कुटी नाटी जीव निशान लाख पूजा प्रतिष्ठा आदि जतो प्रशाखा गण से जल पाइया उपशाखा बाई जाए स्तब्ध या मूल शाखा बाढ़ते न पाए। प्रथमे उपशाखा करे छेदन तभी मूल शाखा बाढ़ जाए वृंदा। भक्ति को लता मानकर बतला रहे रूप गोस्वामी, उपशाखाएं दो प्रकार की होती हैं। जैसे धान के पौधे के साथ में एक धानी जैसा एक होता है अलग से, जैसे कोई लता है और चारों तरफ से घास जम गई, घास को हटा दो, और एक उपशाखा होती है उस वृक्ष में ही, उसकी जड़ से ही उत्पन्न होती है, जैसे लौकी इत्यादि है। पीपल का पेड़ भी होता है, सबसे उदाहरण यही ठीक है। जैसे लौकी इत्यादि की लताएं हैं उसकी जड़ में ही होती है, नहीं काटोगे तो वो मूल शाखा है नहीं जाएगी, इसलिए ऐसी शाखाओं को नीचे काट देने से मूल शाखा वो बढ़ती चली जाएगी, अनेक शाखाएं बढ़ती जाएंगी। और निषिद्धाचार भक्ति के विरोधी का कु और नान, जो अत्यंत भक्ति के विरोधी हैं और नहीं जो नहीं है भक्ति, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, सबको हटाओ। जीव हिंसा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब यदि उसको तुम ग्रहण करोगे तो भक्ति लता छिप जाएगी और वृंदावन में नहीं जाएगी। ट्रांसलेट, बहुत कठिन है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा जरूर आएगी थोड़ा सा भी भक्ति का आचरण करने पर, इसलिए भक्तों को इससे बचने की चेष्टा करनी चाहिए।
नियम ऑप्शन Shalomi's ability, Neum Akshamam, inability to fulfill one's vows. For example, the Sala promises, I will do 64 rounds from today. I will do 1,008 dasavats to Hari Guru Vaishnava, the places of Krishna's pastime, the associates of Radha Krishna, 1,008. He makes a vow, I will leave Ravikatha, rubbish talk, and I will avoid those who engage in such talks. Even though every morning he wakes up and makes such a vow, he cannot do it. 1 or 2 days, Hare Krishna, Hare Krishna, then he has a headache, he cannot complete his vow. Therefore, Visaya, Sangara, fighting with material attachment, and Niyamashvam, actually are pretty much the same thing, only there's a slight difference being Visaya Sangara's ability, inability to leave material attachment, and Niyamasha being inability to complete one's vow, but still the Sadhak in the state of Niyamasha may have conquered material desire, but still he cannot fulfill his quota of Hari Bhajan. And last, Tarakaragini, floating on the waves of material enjoyment. In the same way, as water automatically flows down, water performs bhajan automatically attracts everyone. And everybody should think, I should please that devotee. For example, if some sadhak speaks a nice katha, he speaks very sweetly, does some little bit of Hari Bhajan, then the ordinary person think, he's pretty good devotee, I should please him. Therefore, he or she begins to attract many, many followers and begin to offer him many things. This is not surprising. Guru Goswami says, one who is one pointed to Krishna, who is the soul of all souls, because he satisfies Krishna automatically, the whole world is satisfied by him. Therefore, if someone performs asana to the Lord nicely or speaks katha nicely, then everyone automatically becomes satisfied by him and all begin to love him. That time, love, material gain, puja, worship, and pratishtha, desire for name and fame, follow behind the sadhak. Then generally, a sadhak remains completely unaffected, unattached to bhakti, mukti, siddhi, karmi, all those type of things. Even though bhakti, material enjoyment, mukti, liberation, and mystic cities run behind the Vaishnava never gives them any attention, he ignores them. But sometimes in this stage, the pure Vaishnava, being Krishna, does not desire anything else. But sometimes in this stage of Tanangarangini, the sadhak becomes captured by desire for wealth, worship, and name and fame, and his bhakti becomes covered. Therefore, we should accept that much which is favorable for the service of Hari Guru Vaishnava and maintaining our life, but not more than that. The example is the disciple of Haridas Thakur, the prostitute. After the blessings of Haridas Thakur, everybody came for her darshan and was offering her many things, but she only took that much which was necessary and not more. Therefore, the conversation between Mahaprabhu and Sri Rupa Goswami It was described very clearly. The main branch is called the Bhaktivinoda Beach. The main plant is the creeper of devotion. But alongside that creeper of devotion, there may be many weeds. Or from the main shoot of the creeper of devotion, there may be some offshoots called upasakas. These are two types. Nisidacha and Kutinati. Nisidacha means forbidden behavior, and Kutinati, Kuna, means bad. Kuna means bad, and Na means which is practical, unfavorable for devotion. Therefore, this upasaka, these branches from the main tree of devotion, which should be cut, and Nisidacha and Kutinata. Therefore, just like, does anyone know what a loki is? A pumpkin plant? If you go, pumpkin or loki, people don't know what a loki is. If there's a pumpkin and you go and trim off the side branches, then the main branch of the pumpkin tree doesn't grow very high. Pumpkin plant. It becomes, it doesn't grow very high, it does not develop. Therefore, the sadhak should cut off all these unwanted branches from the main branch of devotion.
এটা কীর্তন কর।
What? what you heard from Madhurji Kadambi.
Devotional service to his lotus feet,
with the mood of Vishramba. Vishrambena Gurur Seva. Vishramba Seva means that we accept Sri Guru in the most intimate way within our heart, just as intimately as we would accept a family member, a dear, near and dear family member. We accept Sri Guru into our heart and we serve his lotus feet with deep attachment and devotion. And we follow his instructions, how we should engage our senses, our mind and intelligence in the service of Krishna. So Sri Guru gives us direction that we should follow Sri Upaneshamrita by Sri Rupa Goswami Pad, Vachodegam Manasakodavegam. We should control these six urges, learn to tolerate them, that we should perform the six favorable activities, we should avoid the six unfavorable activities, we should associate with devotees in the six favorable ways, and in this way gradually progress. But along the way, we will notice that our efforts, we may make some efforts, but we will feel that we are defeated, that we are not able to accomplish our task. But it is very inspiring to hear what is real bhajan, as Gurudev told this evening. Real bhajan means that whether or not I am seeing that I am making so much progress, or I am not making progress, I will not give up this path of bhakti. Because it is sure and certain, it is the guarantee of all the shastras, of the sadhus, of Sri Guru, that if we stick to this path that they are giving to us, then it is simply a matter of time before we achieve perfection. But we have to understand that we have been conditioned within this material world since time immemorial, as Gurudev told in the beginning of the class, that we have, in the beginning of the class, he told that we have so many impressions, so many samskaras from previous lives. And these samskaras, these impressions, they are causing us to oscillate back and forth. We have material desires cropping up within our heart from time to time, material attachments. We don't know how to handle these. Sometimes we become completely overwhelmed by these attachments, and we even leave the path of bhakti somewhat temporarily, some for longer periods. But actually, the real sadhaka, he develops the firm determination, utsaha nishchaya dhairyat. He understands with firm determination, nishchay. He understands that if I simply keep on this pathway, then the mercy of Guru, the mercy of Krishna, it will come to me. That mercy definitely will come. So, as Sri Gurudev is explaining these different types of initiative bhajan, we all can see within ourselves that these initiative bhajan stages, we are going through that. And if we try to follow his instructions firmly, and although we see that sometimes our material attachments overpower us, but if we understand that I should simply accept that I am sinful, that I have performed these activities in previous lifetimes, that I must learn how to tolerate these activities, these reactions for my previous sinful activities. My previous sinful activities are causing different types of distress and suffering. And therefore, if I do this with firm determination, in course of time, it is sure and certain that I will gain the blessings of Krishna. And we will attain that ultimate goal. So everything depends, just like in Damodar month, we hear the pastimes but Mother Yashoda trying to tie Krishna. And always her attempt is two fingers too short. And we are told these two fingers represent on one side our own effort, on the other side the mercy of Krishna. We must have both. So therefore the sadhaka understands that if I try, if I make my endeavor, then Krishna will definitely, definitely reciprocate. Therefore, he must be patient, dhairyat, patience, always realizing that first, before I can attain anything, I will have to attain the qualification to have that thing. Srila Bhaktivinoda Thakur explains this point in his Bhakti Tattva Viveka. He says there that sometimes sadhakas, they are performing their sadhan bhajan for so many years. And then they come to a point where they feel, oh, I have not attained what I have come to attain. I have not made such and such level of advancement. They become discouraged and they give up the process of bhajan. But Srila Bhaktivinoda Thakur explains that this discouragement can easily be overcome simply by understanding one thing. And what is that? That in order to attain anything that we want to attain, we first of all have to attain the qualifications to get that thing. So therefore this is called honesty. Honesty with one's own self. And therefore in humility the devotee goes on accepting whatever difficulties are coming on his path. He understands this is caused by my own previous karmas, and therefore I will go on tolerating the effects of my past activities, and I will constantly serve the Supreme Lord with utter devotion, body, mind, and words, and surrender to the instructions of Guru, and in course of time, by his mercy, I will attain the adhikar to attain these things. So that is one little point of understanding the necessity of perseverance in the path of bhajan by the mercy of Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur and this very wonderful, beautiful commentary which illuminates all these instructions given to us by Srila Gurudev.
Kirtan. Kirtan.
Drama they can start.
Hare Krishna. Kalamara Vasekore Kokilavan Jabar Vayatan Charan Pari